बापे ने वास्तविक मान क्या है, ये सर्वमान सत्य है। हम सभी सर्व दुखों की निवृत्ति, चिर शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति चाहते हैं। और ये सब बात किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है। अमुक प्रकार की परिस्थिति में हमको सर्व दुखों की निवृत्ति होगी, चिर शांति होगी, जीवन मुक्ति होती मिलेगी, ऐसा नहीं है। और किसी वस्तु के आश्रित भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के आश्रित भी नहीं है, किसी अवस्था के आश्रित भी नहीं है। तो जिसकी प्राप्ति किसी परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु व्यक्ति अवस्था आदि की अपेक्षा नहीं रखती, उसकी प्राप्ति अपनी प्राप्त परिस्थिति में ही हो सकती है। कैसे हो सकती है? यदि हम परिस्थिति को साधन सामग्री के रूप में स्वीकार करें, उसमें जीवन बुद्धि न रखें, तो प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से हम बड़ी सुगमता पूर्वक सभी परिस्थितियों से अतीत जो अविनाशी स्वाधीन रसरूप जीवन है वो मिल सकता है। जो सभी परिस्थितियों से अतीत है वही हम सबका अपना है, उसकी हमें प्राप्ति हो सकती है परिस्थिति के सदुपयोग से। अब आप कहेंगे परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? तो परिस्थिति का अर्थ है सुख और दुख। ये बात अलग है कि जीवन अधिक दुख हो, कम सुख हो, कम सुख हो, अधिक दुख हो, ये हो सकता है। लेकिन सुख दुख का ही दूसरा नाम परिस्थिति है और सुख दुख का ही नाम संसार है। तो सुख दुख के सदुपयोग से हम सुख दुख से अतीत जीवन पा सकते हैं। और सुख दुख का मूल क्या है? ऐसा लगता है कि सुख का सदुपयोग उदार होने में है, सेवा करने में है, और दुख का सदुपयोग विरक्त होने में है, त्याग करने में है। जो दुख में विरक्त है, जो सुख में उदार है, अथवा यहां को जो सुख में सेवा करता है और दुख में त्याग को अपनाता है, वो सेवा और त्याग के द्वारा स्वतः सुख दुख से मुक्त होकर चिर शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति प्राप्त कर लेता है। अब हमें किससे मुक्त होना है? सुख और दुख से। दुख से तो सभी मुक्त होना चाहते ही है, परंतु सुख से मुक्त नहीं होना चाहते। बस यही एक हमारी भूल है कि हम सुख से मुक्त नहीं होना चाहते। सुख को पसंद करते हैं, तो सुख को पसंद करते हैं अपनी मर्जी से, और दुख भोगना पड़ता है बेबसी से, मजबूरी से। ऐसा होता नहीं कि सुख को भोगते रहे और दुख को भोगना पड़े, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसलिए हमें सुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे हो? तो सुख में और रस में एक बड़ा भेद है। वो भेद क्या है कि सुख भोगने से भोगने की शक्ति का ह्रास होता है और भोग सामग्री का विनाश होता है। ये प्राकृतिक विधान ही है। अगर आप लोगों ने किसी भाई बहन का ऐसा अनुभव न हो तो विजोत्तर कर सकते हैं। सुख भोगने से भोगने की शक्ति का ह्रास और भोग सामग्री का विनाश होता है। स्वाभाविक बात है, होता ही है। इसलिए हमें सुख से मुक्त होना है। कैसे हो सकते हैं कि सुख दुख से अतीत जो जीवन है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसकी हम आवश्यकता अनुभव करें, आवश्यकता अनुभव करें। जब हम अपने द्वारा अपने लिए परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करेंगे तब सुख भोग की रुचि नाश हो जाएगी। कमाल की बात है। और जब सुख भोग की रुचि नाश हो जाएगी तब देह का शरीर का जो तादात्म है, जो संबंध है, वो टूट जाएगा। सुख भोग की रुचि का नाश होने से शरीर और संसार का संबंध टूट जाता है। ये नहीं है कि भोग की रुचि का नाश होने से अभी अभी शरीर टूट गया, तो नहीं, शरीर तो टूटेगा ही, अभी तो नहीं टूटेगा, एक बार शरीर टूटेगा, लेकिन जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा ही, उसका परिवर्तन हो ही रहा है। तो शरीर के तोड़ने का प्रश्न नहीं है, संसार के छोड़ने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि शरीर और संसार से हमारा संबंध न रहे। हमारा संबंध टूट जाए, शरीर का संसार का संबंध नहीं टूटेगा, वो तो अभिन्न है, दोनों एक जात के हैं। तो संसार से हमारा जो संबंध नहीं रहता, तब किसी प्रकार का दुख भी जीवन में नहीं रहता। आप कोई ऐसा दुख बताइए कि जिसका दृष्टि से संबंध न हो और दुख हो जाए, अथवा कोई सुख बताइए। सुख दुख संसार के संबंध से ही होता है, और जब संसार का संबंध टूट जाता है तो सुख दुख भी छूट जाता है, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ये भी कह सकते हैं, और परमात्मा संबंध हो जाता है ये भी कह सकते हैं। इस दृष्टि देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति में या परमात्मा के संबंध को स्वीकार करने में किसी प्रकार की अस्वाभाविकता असुविधा नहीं है संबंध स्वीकार करने में। लेकिन कब? जब संसार से संबंध नहीं रहता तब। और संसार संबंध कब नहीं रहता? जब हमें अपनी वास्तविक मान का अनुभव हो जाए। कौन हो रहा है? हमारी वास्तविक मान क्या है इसका अनुभव हो जाए तो शरीर और संसार संबंध टूट जाता है। शरीर रहता है, संसार भले जितना भी रहे लेकिन संबंध टूट जाएगा। और यही एक ऐसा मौलिक सत्य है, एक स्वाभाविक सत्य है कि संसार के संबंध टूटने से हम अगर अध्यात्मवादी हैं तो अपने में संतुष्ट हो जाते हैं। संसार का संबंध टूटने से हम अपने में संतुष्ट हो जाते हैं, और अपने में संतुष्ट होने से हमें परमात्मा मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा अपने में भी है। अपना तो है ही है पर अपने में भी है। और जब हम संसार से संबंध नहीं तोड़ते हैं तब परमात्मा के रहते हुए भी हम स्वयं परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। ये जीवन का सत्य है। अब आप सोचिए, आपके सामने जो प्रश्न है वो ये नहीं है कि क्या बताएं, हमको अमुक प्रकार की वस्तु प्राप्त नहीं हुई, योग्यता प्राप्त नहीं हुई, सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम परमात्मा से दूरी अनुभव कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा से दूरी अनुभव कर रहे हैं इससे हमने अपनी मर्जी से संसार से संबंध जोड़ लिया। संसार का संबंध संसार नहीं, शरीर नहीं, शरीर और संसार का संबंध कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वस्तु और व्यक्ति का संबंध जिसे हम स्वीकार करते हैं उस हमारे बनाए हुए संबंध से ही हम परमात्मा से दूरी अनुभव करने लगते हैं, भेद अनुभव करने लगते हैं, भिन्नता अनुभव करने लगते हैं। यदि हम अपने जो बनाए हुए संबंध को तोड़ दें, अर्थात जो कुछ हमें शरीर और संसार के रूप में प्रतीत होता है उसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सत्य को अनुभव करें, उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, है नहीं मेरा कुछ, है नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, यही दो बातों में संबंध टूटता है। और ये दोनों बातें निज ज्ञान से सिद्ध हैं। आप ज्ञान पूर्वक ये भली बात जानते हैं कि किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु की स्वतंत्र स्थिति नहीं है। स्वतंत्र स्थिति का क्या होता है? आप संसार के संबंध में ये निर्णय दे सकें कि ऐसा है, ये आपका निर्णय नहीं हो सकता। वैसे तो अनेक दार्शनिक दृष्टिकोण है, सबने कुछ न कुछ संकेत किया है, पर जैसा जिसने संकेत किया है वैसा ही है ऐसी स्थिति, क्योंकि है सब उसके लिए कहा जाए जिसकी स्थिति हो, परिवर्तन का प्रवाह चल रहा हो, उसमें स्थिति कैसे कहेंगे आप? तो जिसकी स्थिति नहीं है उसमें अपना करके कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। आप याद करके देखें कि जैसे शरीर के परिवर्तन का आपको अनुभव हो रहा है, उत्पत्ति का विनाश का परिवर्तन का अनुभव हो रहा है, ऐसे किसी भी भाई को किसी बहन को अपने परिवर्तन का अनुभव नहीं होता, न उत्पत्ति का अनुभव हो। बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो ये तो कह सकते हैं कि शरीर की उत्पत्ति हुई, पर कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि मैं की उत्पत्ति हुई। मैं की उत्पत्ति की बात किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक सिद्ध नहीं कर सका, और मैं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा कोई दार्शनिक भी सिद्ध नहीं कर सका, क्योंकि मैं की खोज की तो है मिल गया और मैं मिट गया। अब जो चीज विज्ञान से और दर्शन से सिद्ध नहीं है उसको मानते रहना ये भूल है। आप कहेंगे दर्शन क्यों नहीं मैं कोशिश कर सका? आप विचार करके देखो, जिसे आप मैं करके अनुभव कर रहे हैं, क्या उसका कैसे संबंध हो सकता है कभी? क्या हो तो नहीं सकता, हो सकता नहीं तो है ही नहीं और होगा भी नहीं। पर आप ये मेरा है ऐसा किस आधार पर मानते हैं? जिस वाणी से बोल रहा हूं वो वाणी मेरी है, इसमें क्या हेतु है? कैसे मान लेते हैं आप, जबकि आप जानते हैं कि मैं का ऐसे संबंध है भी नहीं, हो सकता भी नहीं, कभी होगा ही नहीं। और जब मैं का ऐसे संबंध नहीं रहता, अगर ऐसा आप ठीक अनुभव कर लें, तो आप में किस प्रकार की प्रचिन्नता रहती है सो तो बताइए। और जब प्रचिन्नता नहीं रहती तो जो अप्रसन्न परमात्मा है उससे दूरी कैसे बनी? तो जो जीवन का सत्य है, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है, देखो भाई कोई बुरा तो मानना मत और ठंडी तेवी से सोचना, जो चीज ज्ञान से सिद्ध है क्या उसके लिए भी प्रमाण चाहिए? तो ज्ञान क्या हुआ? तो विश्वास हो गया। विश्वास में और ज्ञान में यही तो फर्क है कि जो चीज ज्ञान से सिद्ध है उसके लिए प्रमाण वास्तव में चाहिए नहीं। तो चीज क्या ज्ञान से सिद्ध है? कि मैं का और यह का मिलन देखा नहीं गया। हाँ ये बात अलग है कि मैं स्वयं यह में ममता कर ले, यह की कामना कर ले, जिसमें वो स्वाधीन है, तो मैं यह की ममता मैंने स्वीकार की कि यह ने विवश कर दिया ममता करने के लिए। क्या
मैंने स्वीकार
की? आपने स्वीकार की। जब आपने ममता स्वीकार की, क्या वो ये ममता एक चीज मेरी है ये ज्ञान से सिद्ध है क्या? और विश्वास से सिद्ध है क्या? न ज्ञान से सिद्ध है न विश्वास सिद्ध है। फिर जीवन में ममता का क्या स्थान? विचार करके देखा जाए। ये बात अलग है कि आप स्वीकार की हुई ममता को कैसे तोड़ेंगे, वो तो उसके लिए तो और दूसरा उपाय भी चलेगा। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ममता आपने किस आधार पर स्वीकार की, जबकि आपके ज्ञान से सिद्ध नहीं है। एक बात कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं है कब स्वीकार की, पर ज्ञान का विरोध है इसलिए कोई चीज मेरी है नहीं। ये तो आप कह सकते हैं। जब ये कह सकते हैं तो मेरी नहीं है जो चीज, और आज मैं उसको अपना मान करके, जैसे वाणी मेरी नहीं है पर मैं अपना मान करके मुझे बोलने की स्वाधीनता मिली, तो ये जो बोलने की स्वाधीनता मिली तो क्या वाणी से ऐसी बात बोलना चाहिए जिसमें श्रोताओं को कष्ट हो क्या रहे, या उनका अहित हो, या अपने ज्ञान का विरोध हो क्या रहे, नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे ज्ञान विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए क्या रहा है जी, ज्ञान विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब ज्ञान विरोधी कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान के अनुरूप कर्म होगा या बंद हो जाएगा जी, क्या क्या अरे ज्ञान विरोधी कर्म जब नहीं करेंगे तो ज्ञान के अनुरूप कर्म होगा कि नहीं, उसी कर्म के द्वारा योग की प्राप्ति होती है। जो लोग ये कहते हैं कर्म से योग की प्राप्ति नहीं होती, मेरी समझ बात नहीं आती कि भाई ज्ञान विरोधी कर्म आपने छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया तो क्या सत्य बोलना नाश हो गया जी। हाँ एक बात है, उस सत्य बोलने का फल मुझको नहीं चाहिए, अगर फल चाहिए तो पुण्य होगा, लोक लोकांतर के उत्कृष्ट भोग मिलेंगे, और नहीं चाहिए तो जीवन मुक्ति मिलेगी। लोग कैसे ये कह देते हैं कि कर्म के द्वारा मानव मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त हो सकता है लेकिन कर्म के फल का और अभिमान का त्याग करके, गलत काम करे नहीं, सही का अभिमान और फल मांगे नहीं। अब बताओ कौन सी चीज मांगने वाली रहेगी,
अहंकार
कैसे जुड़ता
है,
अहंकार
कैसे
जुड़ता
है,
क्या क्या
अहम का संबंध कैसे जुड़े
किसके साथ,
अहम का कर्म
देते हैं
अहंता तो रहता
है। हाँ नहीं, अहंता नहीं रहती है, कर्म देखो एक तो होता है जैसे आप भोजन करते हो तो अहंता रहती है कि आज मैं 400 रुपए ज्यादा खा लिए, लेकिन जब भोजन पचता है तो क्रिया होती है कि नहीं, क्रिया बंद नहीं हुई ना, लेकिन आप मान कैसे अग्रहण तो नहीं करते, मैंने भोजन किया था इतना उसने से पचा लिया और इस रूप में है, आपको भास होता है कभी,
अच्छे कर्म करने का
काम। ओ सुनो तो सही, अच्छे कर्म करना तो बेईमानों का काम है, बुरा मत मानना, ये जितनी है बुरे कर्म का पराश्चित है अच्छे कर्म करना, अगर बुरे कर्म नहीं करते तो अच्छे कर्म का अभिमान आएगा
भाई, झूठ नहीं बोले हैं तो सत्य बोले अभिमान कैसे नहीं आएगा,
इसलिए अभिमान आता है हमेशा तब जब हम अपने लिए बोलते हैं, हमें सत्यवादियों की सूची में नाम हो जाए और सत्य बोलने का जो पुण्य है वो हमको मिल जाए तब अभिमान होता है। झूठ बोलते हैं भोग की रुचि को लेकर और सत्य बोलते हैं पुण्य की रुचि को लेकर, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सत्य काय बोलेगा झूठ काय बोलेगा, सत्य बोलेगा झूठ उसको अभिमान काय करेगा। ठीक है, आप विचार करके देखो, बड़े बड़े
विचार से जैसे मालूम होता है कि सत्य बोलते हैं तो उसमें भी कर्तृत्व का अंश रहता है,
नहीं नहीं कर्तृत्व का अंश रहता है करने के राग निवृत्ति के लिए, न कि करने का फल भोगने के लिए। अरे बिना गुरु की वाणी के कल्याण
गुरु जी से पूछ तो लेगा,
मजा कर रहा हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि सत्य बोलते इसलिए कि बोलने के राग को मिटा नहीं सके, अगर हमारे जीवन में करने का राग न होता तो हमारा शरीर से तादात्म्य होता ही क्यों, हमें ये क्यों मालूम होता है कि हमारा जन्म हो गया हमारी मृत्यु हो गई, मानने से होता है, तो मानने से होता है इसलिए भाई बोलना है किस लिए। देखिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे हम कर्तव्य पथ के साधक हों, चाहे हम विचार पथ के साधक हों, चाहे हम विश्वास पथ के साधक हों, साधक हैं ये मानना पड़ेगा। अगर कोई विचारक है तब भी तो साधक ही है, सिद्ध थोड़ी है, और विश्वासी है तब भी तो साधक ही है, सिद्ध थोड़ी है, तो कर्तव्य पथ का भी हमारे जीवन से संबंध है और विश्वास पथ का भी हमारे जीवन से संबंध है, और विचार पथ का ही हमारे जीवन संबंध है। कर्तव्य पथ हमें करने के राज से मुक्त करता है, ये तो अपना व्यक्तिगत लाभ हुआ, और हमारे द्वारा संसार के अधिकार की रक्षा होती है, ये बाह्य लाभ हुआ। महान विरक्त हो, ज्ञान योगी की दुम हो और भूख लगती है तो कहा, हमने देखा है कि जब साधु विरक्त लोग इकट्ठे होते हैं तो मानो प्रेशर से क्या होती है, हम भी तो विरक्तों में रहे होते हैं ना, तो चर्चा ही होती है, कहाँ से आए संत जी, यहाँ से आए। अच्छा भगवान वहाँ भिक्षा की चाली कैसी है? अरे हमने एक महाविरक्त मंडल में बड़े महापुरुष थे जो पंडित कहलाते थे विरक्त मंडल के, वो कह रहे थे कि हम पहले कुंभ में जब आए थे तो हमने ऐसा अमरूद खाया था जिसमें बीज नहीं था। अरे हमने के 12 वर्ष पहले का अमरूद खाया हुआ याद बना हुआ है, तो कहे भरे में हो सिद्धांत का मत करो, साधक है सिद्धांत तो सिद्धों का काम है, पूजा कोई है नहीं, और दो सिद्ध आपस में बात करें क्यों, और वो भी सिद्ध से बात करें
प्रयोजन क्या रहा,
प्रयोजन क्या रहा, तो सिद्ध तो बढ़िया नहीं सब साधक है। अब साधक में ये है कि आपके पास जो करने की सामर्थ्य है और जो जानने की सामर्थ्य है और जो मानने की सामर्थ्य है, ये तीनों सामर्थ्य है, इनका क्या आचार डालोगे, उपयोग नहीं करोगे? आखिर करने की सामर्थ्य का क्या उपाय करोगे सिवाय इसके कि अपने पर ऐसा मान लो, हमारे कहने से मान लो, आगे सवाल हल हो जाएगा। हाँ, ये मान लो कि हम पर सभी का अधिकार है, तो सभी का अधिकार है क्या करें, तो भैया बुराई तो किसी करेंगे नहीं, व्यापक हो गया
दुरुपयोग कैसे करें अधिकार का,
वो तो करेंगे नहीं, बुराई रहित हो गए। अब होने लगी भलाई, कोई भलाई है तो हमें दूसरों का अधिकार देना है, हमारा किसी पर अधिकार है ही नहीं, तो उसका अभिमान और फल कैसे मांगी? तो भलाई के अभिमान और फल से मुक्त हुए और बुराई करने से मुक्त हुए। क्या ये एक सहज और स्वाभाविक मानवीय स्वभाव नहीं है? क्या रहे सहज है और स्वभाव किसका, ये मानवीय स्वभाव है। यहाँ आत्मा परमात्मा किताब का पढ़ा हुआ अलग रखना, अभी ना सवाल मत करना इस मानवीय स्वभाव के अनुसार हम स्वाधीन नहीं हो जाते क्या, अपने में संतुष्ट नहीं हो जाते क्या, और अपने में संतुष्ट होकर अपने को पाते हैं कि परमात्मा को पाते हैं? आपने तो पहले मौजूद से कहा असंतुष्ट हुए,
संबंध जोड़ लिया था ना, मान लिया था असंतुष्ट,
संतुष्ट थे, अब अपने में संतुष्ट हुए। तो जब हम अपने में संतुष्ट हुए तो कोई जो हमारा था, वेद इसकी महिमा गाते हैं, नृत्य इसकी महिमा गाते हैं, भगवान जिसकी जिसका वर्णन करते हैं, उसने हमें कहा अच्छा 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 अच्छा, देख मैं हूँ और तू है मेरी प्रीत और मैं हूँ तेरा प्रीतम, तो प्रीत से तू रस तो दे और मुझे रस दे, और जब उससे नहीं रहा जाता तो प्रीतम स्वयं कहता है मैं भी जरा प्रीत कर बन के देख लू। अरे भाई, विश्वास के आधार पर ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त होता है, विचार के आधार पर जीव भाव मिथ्या होता है। विचार के आधार पर जीव भाव जो है वो मिथ्या सिद्ध होता है नहीं, और विश्वास के आधार पर ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त होता है। बिजली के बेर खाने के लिए, गोपियों का माखन खाने के लिए, अरे विदुरानी के छिलके खाने के लिए, सोचो विचार करो। अब आप एक बात हमें बताओ कि साहब, आपको मुक्ति के सिवाय कोई बड़ी चीज दिखाई देती है क्या?
सुनते हैं प्रेम,
सुनते नहीं, हमको मालूम है। हाँ, मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जैसे वैराग्य योग का साधन है, वैराग्य हो जाए, राग रहित हो जाए तो योग प्राप्त होगा ना, तो राग रहित होने का साधन हुआ योग साध्य हुआ। ऐसे ही भैया, योग बोध का साधन है और बोध प्रेम का साधन है।
बात तो कर्म पथ की चल रही थी,
अभी अभी कर देते हैं, कर्म पथ आएंगे, अभी आ जाते हैं।
ये मुक्त होने के बाद भी देखने वाला और देखने वाली चीज रह गई तो वो मुक्ति ही क्यों कही?
पहले एक बात बताइए, पहले बताइए, बद्ध के सामने मुक्त का प्रश्न है कि मुक्त के सामने?
वो तो बात दूसरी है,
उसी से आगे चलेगा ना, अभी विषांत हो जाए, अभी बात करता हूँ। अब कर्म की बात करता हूँ। जो लोग ये कहते हैं, यानी हमने विचार करके जीवन में अनुभव करके देखा है कि जिस राग को सभी राग विचार से नहीं मिलाए जाते, कोई कह सकते आने का राग मिला देंगे, कैसे मिटा देंगे विचार से, नहीं जाना पड़ेगा उन्हें राग रहे थे
राग रेख हो जाएगा, तो क्रिया से रेख नहीं हो सकते।
वो बच्चा मैं कहता हूँ तो छठी जाने का राग तभी ना मिटेगा जो छठी हो रहा है, सही काम करने से ही करने का राग निवृत्त होता है, सरकार करने से करने का राग निवृत्त नहीं होता। हम जो एक महात्मा के साथ रहते थे ना, तो हमको जब समझ में डाले तो ये कमी नहीं करते मेरा केवल किनारे भजन होने दो। वो कहते थे कि चक्की साफ हो जाए तो स्वर्ग का सुख मिलता है,
ठीक है
तुम भाजार पकड़ी। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मैं आपसे एक बात सोचिए, एक बात सुनकर के जो मानी जाती है वो ज्ञान है कि विश्वास,
विश्वास में ज्ञान
जाएगा। आप तो विश्वास के पथ को ज्ञान का पथ मानने लगे और ज्ञान के पथ को आपने छोड़ ही दिया, लेकिन ज्ञान और कर्म ये दोनों तत्व तो आपको अपने में पृथक नहीं दिखाई देते क्या? बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो कर्म का संबंध लोक के साथ है और ज्ञान का संबंध भूल मिटाने में है। क्या भूल मिटाए मिटाए? ये भूल कि मिली हुई बच्चों योग्यता सामर्थ्य को जो हम अपना मानते थे ये अपनी नहीं है, कितनी भूल मिट गई। और जब मिली हुई अपनी नहीं है तो उसी तरह की और चाहे क्या? तो अचान होना और निर्मम होना ये ज्ञान का फल है कि नहीं? अच्छा, निर्मम होने से जो निर्विकारता प्राप्त होती है और अचान होने से जो शांति प्राप्त होती है, विचार कीजिएगा वो शांति स्वतः सिद्ध है या नहीं, वो निर्विकारता स्वतः सिद्ध है कि नहीं? अगर उस निर्विकारता में हम रमण करें और शांति में रमण करें तो स्वाधीन हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अच्छा, और स्वाधीनता में संतुष्ट रहे तो पूर्ण हो सकते हैं क्या? हम रहेगा ना,
हम पूर्ण है
नहीं, पूर्ण तो हम तो पूर्ण है ही है, इसे हम दो आपत्ति नहीं, आप पूर्ण नहीं है, लेकिन आपको हमारी जरूरत पड़ेगी प्यार पाने के लिए। पूर्ण को पूर्ण भिखारी बनता है प्रेम का, और जो अपूर्ण है वो उसका स्वरूप होता है प्रेम। लेकिन हमारी अपनी मजहबी बात है। खैर, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि केवल ज्ञान ही से अज्ञान नाश होता है, विश्वास से नहीं होता, कर्म से नहीं होता, कहते हैं वो स्वतंत्र है, कह सकते हैं उनका उसी से नाश हुआ होगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सही काम करके क्या काम रहित नहीं होते? और काम रहित होने पर हम आराम में और हमें पर्दा रहेगा जी? काम का ही देखिए, परमात्मा से हमको किसने दूर किया? संसार के आकर्षण ने, देखिए संसार ने, तो संसार का आकर्षण क्या सेवा से नाश नहीं होगा? सेवा करो, कर्तव्य करो, धर्माचरण करो, क्या क्या शुरू हो जाएगा? तो संसार नाश हुआ कि संसार का आकर्षण नाश हुआ? अच्छा, शरीर मुक्त हुआ, संसार मुक्त हुआ कि जिसका आकर्षण नाश हुआ वो मुक्त हुआ? तो हम तो कर्म से मुक्त हो गए, अब कहते हो विज्ञान से होंगे मुक्त, करो खंड ईमानदारी से।
हम रहा ना, हम मुक्त हुए,
मैं कहता हूँ हम तो उसमें भी रहा, मुक्ति के भोगी में हम रहता है, और जो मुक्ति का भोगी नहीं है उसमें हम नहीं रहता, वो है प्रेम, वो प्रेम प्रेमी में, प्रेमी में रहता है, परमात्मा प्रेम आश्रम में रहता है। देखिए बात सुनो, जब हम संकेत करेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेमी की संज्ञा नहीं रही, लेकिन प्रेम का नाश हुआ क्या?
प्रेम का तो नाश
नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, नहीं हुआ ना। अच्छा, कोई प्रेम का पान करने वाला है कि नहीं?
कौन है, ही नहीं हुआ।
अच्छा, प्रेम ही प्रेम है खाली, ये गलत बात है, ये अनीश्वरवाद की बात है। गॉड इज लव, गॉड इज लव नहीं, गॉड में भी लव है।
गॉड को लव है ही,
बॉडी सब नहीं है,
बॉडी सब
ना, ये गलत अनुवाद है। देखो एक बात सुनो, परमात्मा जैसे परमात्मा ज्ञान ज्ञान विवेकी लोग ज्ञान स्वरूप कहते हैं कि नहीं? सुन कर लो, सुनते जाओ, सर क्या सुनते जाओ, पहले ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना?
हाँ, कहते हैं।
अच्छा, तो ज्ञानी का नाश होगा कि जिसका ज्ञान स्वरूप उसका नाश होगा?
ज्ञानी का नाश होगा,
उसका तो नहीं होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात हुई। ऐसे ही प्रेमी का नाश होगा कि प्रेम का नाश होगा?
प्रेमी का नाश होगा,
प्रेम का नाश नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ही योगी का नाश होगा कि योग का नाश होगा?
योगी का नाश होगा,
योग का तो नहीं होगा। तो योग बोध प्रेम रहेगा या नहीं?
रहेगा।
बहुत सुंदर बात, वही तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा स्वरूप हुआ। सुन तो लो, सुन तो लो, अरे भाई तुम जो बोल रहे हो कहाँ से आ गया, कहा क्या कह रहे, नहीं आ गया, बोल तो नहीं हो, सुनते जाओ। देखो देखो, यहाँ यहाँ बात बड़े प्यार की है। योग बोध प्रेम तुम्हारा स्वरूप हुआ, और वो जो योग बोध प्रेम है वो परमात्मा की महिमा हुई। ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है योग बोध। आप लोग क्या करते हो कि परमात्मा की महिमा को तो परमात्मा का स्वरूप मान लेते हो। कोई कहे हम तो प्रकाश को ही सूरज मानेंगे, हम तो उष्णता को ही सूरज मानेंगे। अरे भाई ये तो तुम मानोगे ना, लेकिन सूरज से तो पूछो, सूरज तो कहता है ये प्रकाश और उष्णता तो मेरी महिमा है। तो योग बोध प्रेम जो मनुष्य को प्राप्त होता है सरकार दीनानाथ, वो आसक्ति जो निवृत्त होती है मनुष्य की, योग बोध प्रेम जो प्राप्त होता है, तो ये मनुष्य के विकास की चरम सीमा है कि परमात्मा का की चरम सीमा है?
ये परमात्मा स्वरूप ही मानते हैं।
अरे बेकार, हम कहने बेवकूफ लोग सूर्य को स्वरूप स्वरूप मान लेते, होकर मने करते ठीक है, तो आप मान ले दादा, मान लो बेटा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ,
मैं तो बका लग गया, तुम कैसे निवेदन
केवल ये था, अलग अलग न मान रहे हैं, लेकिन प्रकाश उसकी विभूति है। सुनो, नहीं नहीं वो नहीं, बहुत फर्क है। सूर्य की विभूति है प्रकाश उष्णता, और बुद्धि दृष्टि और इंद्रिय दृष्टि वहीं तक पहुंचती है, इसलिए सीमित अहम की आवाज यहीं तक पहुंचती है कि योग विभूति है, बोध विभूति है, प्रेम विभूति है। योग में शांत रस है, बोध में अखंड रस है, प्रेम में अनंत रस है। या ये मनुष्य की के विकास की चरम सीमा हुई, ये तो मनुष्य का विकास हुआ। लेकिन जिसने मनुष्य का निर्माण किया था उसको क्या कहोगे?
परमात्मा।
परमात्मा, तो तुम हुए मानव के विकास, परमात्मा में तुम्हारा योग हुआ, परमात्मा का तुम्हें बोध हुआ, परमात्मा में तुम्हारा प्रेम हुआ। तो ये जो प्रेम और प्रेमास्पद का जो नित्य विहार हुआ वो क्या हुआ? क्या वो भी अविनाशी, वो विनाशमान है? क्या वो भी आसक्ति है? क्या वो स्वयं प्रसन्नता है? इसीलिए वहां भार निर्विशेष ब्रह्म, सर्वशेष ब्रह्म, ये ब्रह्म का ही रूप है कि किसी और का रूप है? अब देखो जो निर्विशेष के पुजारी वो क्या कहते हैं कि सविशेष ब्रह्म माया प्रसारित है, और जो सविशेष पुजारी क्या कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म हमारी किशोरी जी की चरण का प्रकाश है। ये कहते हैं तो मतवालों की भी जानकारी को बढ़े
मतवाले।
हमारा निवेदन
आपने कहा कि जिसे निर्माण किया भगवान ने सृजन किया, तो वो भगवान तो सगुण है।
नहीं, मैं कहता हूँ वो सगुण तो है, लेकिन वो भगवान उन गुणों से युक्त है जो अप्राकृतिक है। भगवान में देह देही विभाजन ना है।
अच्छा।
भगवान में नहीं
होता, शरीर नहीं होता,
शरीर शरीर अलग अलग नहीं होता, तभी तो कहते हैं। देखो किसी आदमी की बात सुनो तो उसको ईमानदारी सुनना चाहिए ना।
हम सुनते थे बंदर,
तो आपको फायदा हो जाएगा। जैसे भगवान की बंसी है तो वो भी चिन्मय है, भगवान की बंसी भी चिन्मय है। तो मतलब क्या हुआ कि चिन्मय तत्व से ही, देखिए बड़ी अच्छी बात श्रवण भूषण सुचारी ने रूपक जाना ना, जब विदेह भी जीवन मुक्त विदेह, आत्मवित विदेह, ब्रह्मवित विदेह, जब रघुनाथ जी को देखने आए तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी? सहज मन मोरा,
विराग रूप
मन मोरा। अब मेरा जो सहज विषय से बयागी मन था वो श्री रघुनाथ जी को देख करके चिपक गया उसमें, यानी ब्रह्म सुख को छोड़कर रघुनाथ जी के दर्शन का सुख भोगने लगा। क्या बात थी? ब्रह्म सुख अखंड था, यह अनंत है, इतना ही फर्क है। तो ये तो मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी निष्ठा में कोई फर्क करें, ऐसा मेरा मत नहीं है। सभी लोग प्रेम और प्रेमास्पद के विहार को स्वीकार करें, ऐसा मेरा मत नहीं है, लेकिन इनकार तो ना करें। मत करो स्वीकार,
अनुभव ना दी स्वीकार,
अनुभव हमको तो है, हमारी बात तो अर्थ करो। अरे भैया तुम ब्रह्म हो जाओगे तो हम तुम्हारी प्रीत हो जाएंगे, तुम्हारा यानी हमारे द्वारा तुम्हारी तो कोई क्षति होने वाली है नहीं, बताओ क्या क्षति हो जाएगी? तुम भले ब्रह्म बने रहो, हम तुम्हारे प्रिय प्रेमी बने रहेंगे, और अगर तुम अविनाशी हो तो तुम्हारा प्रेम नाशी है, तुम अगर अनंत हो तो क्या तुम्हारा प्रेम अनंत सीमित है? तो भगवान की हर चीज अनंत है, तभी भगवान का नाम भगवान है, फिर भगवान कैसे नाम हो जाएगा? प्रेम भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, सामर्थ्य भी अनंत है, सामर्थ्य का प्रतीक योग है, ज्ञान का प्रतीक बोध है, प्रेम का प्रतीक प्रेम है ही है। तो प्रेम भी भगवान में अनंत है, ज्ञान भी भगवान में अनंत है, सामर्थ्य भी भगवान में अनंत है। ऐसे जो प्रभु हैं, उन्होंने अपने में से मनुष्य का निर्माण किया, या मनुष्य की बात हम कहते हैं, जीव की आत्मा हम नहीं जानते, और मनुष्य को तीन तत्व दे दिए, ज्ञान का तत्व, विश्वास का तत्व और बल का तत्व। बल का तत्व दे दिया अपने जगत की सेवा के लिए, और ज्ञान का तत्व दे दिया मुक्त होने के लिए, और विश्वास का तत्व दे दिया भक्त होने के लिए। ये आपके इस जीवन की महिमा है, आप मुक्त हो सकते हैं, आप भक्त हो सकते हैं, आप सेवा परायण हो सकते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ज्ञान से भूल का नाश होता है, और ज्ञान दूसरा नहीं। हमारी भूल क्या थी? हम यह को मैं मानने लगे थे, क्या को मेरा मानने लगे थे, ये नाश हो गया ज्ञान से। नहीं ये मैं हूँ, नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरे लिए है। तीन बातें ज्ञान से तुरंत नाश होती है, अभी अभी अभी। ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, न मेरा है न मेरे लिए है। तो जो शरीर मेरा नहीं है, जो शरीर मेरे लिए नहीं है, वो शरीर प्रभु के जगत की सेवा सामग्री है, ऐसा मान लो। शरीर को जगत की सेवा सामग्री मान लो। किसी को कर्मयोग कहते हैं, कर्मयोग क्या है
भाई? ये आपने जो कहा कि विवेक विरोधी कार्य छोड़ने से सही कार्य होने लगेगा, और सही कार्य से जो है वो योग हो जाएगा।
सही कार्य के फल और अनाज
फल छोड़ने से योग हो जाएगा,
जरूर हो जाएगा।
तो उसका कारण जो हुआ वो हुआ कर्मयोग, आपके हिसाब से?
हमारे हिसाब से उसका कारण हुआ कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करना,
सही है सही।
हाँ।
लेकिन उसका मूल जो है वो तो विवेक हुआ, क्योंकि अगर विवेक पहले न हुआ होता तो हम विवेक
बिल्कुल ठीक कहते हैं। मूल विवेक हुआ तो मूल आरंभिक साधन विवेक हुआ, अंतिम साधन विवेक नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं कर्तव्य आरंभिक साधन है, ज्ञान अंतिम साधन है, इतना मत भेजा सरकार।
नहीं तो जब मूल प्रथम साधन विवेक हुआ तो फिर कर्मयोग का जो उसमें दिया जाता
है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब अंतिम साधन कर्म हुआ तो क्यों उसमें से दिया जाता है?
वो तो बीच की चीज है, मंजिल जो है।
देखो मंजिल कहीं नहीं कहते, जिन्हें बताऊँ आपको, परमात्मा उसे नहीं कहते जो देश की दूरी पे हो जो मंजिल बने, परमात्मा उसे नहीं कहते जिससे काल की दूरी हो।
वो तो
परमात्मा माने देश काल की दूरी से रहे, तो परमात्मा तो आप में है ही है।
लेकिन महाराज एक सिद्धांत है ये भी है कि जो आदि होता है वही अंत होता है।
हाँ बिल्कुल ठीक है।
तो जब विवेक
आदि होता है वही अंत होता है।
हाँ।
तो आदि में क्या था?
विवेक।
विवेक नहीं था।
क्यों?
सोचिए
विवेक
सुनिए। हाँ। विवेक आदि में कैसे था भाई? पहले देखो, सबसे पहले जो जीवन का आरंभ हुआ आपको जब भास हुआ तो मैं का भास हुआ और यह की प्रतीति हुई और परमात्मा को सुना। अब जिस मैं का भास हुआ तो सबसे पहले साधक ने अपने अस्तित्व को स्वीकार किया।
किसके द्वारा?
अपने द्वारा।
तो आपको तो विवेक ही के द्वारा तो किया?
अपनी सत्ता तो
अपनी सत्ता को अपने द्वारा स्वीकार किया। अब अपनी सत्ता के अर्थ में लगाता था यह, तो विवेक निकाली देगा तो ये नहीं है। सोचिए महाराज के पास।
विवेक तो सदैव
अपने स्वरूप तो विवेक
लेकिन उसका स्वरूप तो प्रेम भी है और उसका स्वरूप तो योग भी है और उसका स्वरूप भी कर्तव्य भी है वो तीनों आ जाएंगे। मैं आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मनुष्य को सबसे पहले दुनिया में सबसे पुराना मनुष्य अपने ही को स्वीकार करता है। पहले अपना उसे भास होता है फिर तो संसार की प्रतीति होती है फिर तो गुरु वाणी वेद वाणी से परमात्मा को सुनता है। सुना हुआ परमात्मा देखा हुआ जगत तो महसूस होने वाला मैं जब उस महसूस वाले मैं जब ये मान लिया कि ये प्रतीत होने वाला यही मैं हूँ क्या। देखिए जिज्ञासा संदेह काल में होती है सरकार ज्ञान जिज्ञासा नहीं होती। जो संदेह काल में जो जिज्ञासा सबल हुई तो काम नाश हुआ